कड़कती शीत लहर के बावजूद जो है सो मेनी डिवोटीज हैव ब्रेव्ड द विंटर. तो हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं छठे स्कंद के पांचवा अध्याय जिसका शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप. इसका दो श्लोक यद्यपि बोर्ड पे लिखे हुए हैं 29 और 30 क्योंकि 29वें श्लोक का कोई तात्पर्य नहीं है तो हम इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे. बहुत महत्वपूर्ण संदेश. दोनों श्लोक यद्यपि जो है बोर्ड पे लिखे हैं तो हम दोनों श्लोक उच्चारण करेंगे. ठीक सो देन हम 29वें श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप सुनिए. उसके बाद 30वें श्लोक का जो है हम सामूहिक रूप से जो है उच्चारण करेंगे. इति तानपि राजेन्द्र प्रजा सर्गाधियो मुने उपेत्या नारदा प्रा वाचा कुतानि पूर्ववात. 30वां श्लोक जो है दाक्षायानः संश्नुता गदतो निगमम् मम अन्विच्छतानो पदवीम् अन्विच्छतानो पदवीम् भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः दाक्षायाना संश्नुता गदतो निगमं मम अन्विच्छतानो पदवीम् भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः दाक्षिणायानः संश्नुता गदतो निगमं मम अन्विच्छतानो पदवीम् भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः दाक्षायानः संश्नुता गदतो निगमं मम अन्विच्छतानो पदवीम् भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की 29वें श्लोक का अनुवाद करते हैं, आप सुनिए. उसके बाद 30वें श्लोक हम शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ेंगे. सुनेंगे श्लोक का अनुवाद. हे राजा परीक्षित, नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे और उनसे उसी तरह के गूढ़ शब्द कहे जैसा कि उनके ज्येष्ठ भाइयों से कहा था. तो ये अभी सुखदेव गोस्वामी जी जो है राजा परीक्षित को बता रहे हैं. हम अगला श्लोक का हम शब्दार्थ पढ़ेंगे. दाक्षायानः हे प्रजापति दक्ष के पुत्रों संश्नुतः ध्यान पूर्वक सुनो गदतः जो मैं कह रहा हूं निगमम उपदेश मम मेरा अन्विच्छता अनुगमन करो अनुपदवीम मार्ग भ्रातॄणां अपने भाइयों का भ्रातृवत्सलः हे अपने भाइयों के परम वत्सल. अनुवाद सुनिए. हे दक्षपुत्रो मेरे उपदेश वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो. तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्यश्व के प्रति अतिवत्सल हो, अतएव तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य, नारद मुनि ने प्रजापति दस्य पुत्रों की दूसरी टोली को उनके भाइयों के प्रति स्वाभाविक प्रेम को जागृत करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह प्रेरणा दी कि वे अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुगमन करें यदि उन्हें उनसे तनिक भी प्रेम है। पारिवारिक स्नेह अति प्रबल होता है, अतः नारद मुनि ने उन्हें हयश्व के साथ पारिवारिक संबंध को स्मरण कराने की चाल चली। सामान्यतः निगम शब्द वेदों का द्योतक होता है, किंतु यहाँ पर यह शब्द वेदों में निहित उपदेशों का द्योतक है। श्रीमद् भागवत का कथन है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, वैदिक उपदेश वृक्ष समान है जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। नारद मुनि इस फल को बांटने में लगे हैं, अतएव उन्होंने व्यासदेव को इस महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना अज्ञानी मानव समाज के लाभ हेतु करने के लिए आदेश दिया। अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वाशक चक्रे सात्वतम संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता, इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंध सातवां अध्याय श्लोक संख्या 6। लोग अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं और सुख के लिए वे गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, यह अनर्थ कहलाता है। ये भौतिक कार्यकलाप उन्हें कभी सुखी नहीं बना सकेंगे, इसलिए नारद ने व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के उपदेशों को अंकित करने का आदेश दिया। व्यासदेव ने वस्तुतः नारद की आज्ञा का पालन किया और इसे संपन्न किया। श्रीमद् भागवत वेदों का परम उपदेश है, गलितम फलम श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। तो जैसे बहुत महत्वपूर्ण तो जैसे यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद शुरुआत में बता रहे हैं पहले ही लाइन में कि नारद मुनि ने जो ये शवलाश्व है, ये पहले जो थे वो हरेश्व थे और अब ये शवलाश्व है। तो 1000 जो दश के पुत्र हैं, जो दूसरा बैच है, तो उनको दूसरी टोली जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो उनको अपने भाइयों के प्रति स्वाभाविक प्रेम को जागृत करने को प्रोत्साहित किया। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, भाइयों के प्रति तो किया, पिता के प्रति क्यों नहीं किया, है ना, पिता के प्रति प्रेम को क्यों नहीं जागृत कराया। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ऑलरेडी मिला हुआ है कि वो पिता के प्रेम के कारण ही जो है तपस्या करने आए थे। पिता से प्रेम था इसीलिए उनका आज्ञा पालन करके तपस्या करने आए थे, तो उन्होंने अपने पिता के प्रेम स्वरूप ही जो है उसको आगे बढ़ाया। तो इस पूरे पूरे प्रसंग से और जैसे इस अध्याय का शीर्षक है कि प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप, तो ये अपने आप में ही एक मतलब अनादिकाल से चले आए जो एक द्वंद है इसका सूचक है। तो ये अभी आधुनिक काल में भी जो है, और ये जब तक इस जगत में आस्तिक और नास्तिक या आस्तिक नास्तिक नहीं कहेंगे, दरअसल प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये दो मार्ग जब तक हैं जो कि शाश्वत रूप से हैं और रहेंगे, तब तक ये द्वंद जो है वो रहेगा, भोग का मार्ग और योग का मार्ग, तो ये जो है ये हमेशा रहेगा। जो ऐसे मतलब द स्ट्रगल बिटवीन द एनलाइटेंड एंड द इग्नोरेंट बेसिकली, कि जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है ऐसा पिता जो ज्ञान से संपन्न है वो बहुत ही हर्ष व्यक्त करते हैं जब उसके पुत्र को कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिल जाए या वो पुत्र जो है किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक के सानिध्य में जाए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे। और उसी के बिल्कुल विपरीत एक अज्ञानी पिता जो है उस आध्यात्मिक मार्गदर्शक को अपना सबसे बड़ा शत्रु के रूप में देखता है, दुश्मन के रूप में। तो यहां पर भी इसमें बहुत विचित्र है, इस प्रसंग में जो सबसे विचित्र बात है वो ये है कि कोई ये प्रश्न उठा सकता है, मतलब सोचने वाली बात है कि जब हरेश्वर जो कि 10,000 थे तो 10,000 पुत्रों को जो एक बार दक्ष ने खो दिया तो उसके बाद क्या सोच के दक्ष ने दोबारा शवलाश्व को भेजा उसी मार्ग पे, उसी स्थान पे, उसी प्रकार के तपस्या के लिए। तो ये बड़ी बात है, तो बेवकूफ थे क्या इतने बड़े, एक बार 10,000 यानी कि एक पुत्र जो है निकल गया हाथ से, 10,000 पुत्र निकल गए, 10,000 पुत्र निकलने के बावजूद भी जो है वो माने नहीं, फिर 1,000 पुत्र भेज दिए, क्यों भेज दिए। तो इससे जो है ये पता चलता है कि दक्ष जो है वो धर्म के सिद्धांतों से जो है पूरी पूरी तरीके से भली भांति जो है अवगत थे। ही वॉज ए ड्यूटीफुल फादर इन दैट सेंस, क्योंकि ये पिता का कर्तव्य है कि पुत्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त करे और प्रशिक्षण के तहत वो तपस्या भी करे और आध्यात्मिक विचारधारा से जो है भली भांति अवगत हो। यदि भी दक्ष का जो की जो मंशा थी वो ये नहीं थी कि वो जो है निवृत्ति मार्ग की ओर चल पड़े, दक्ष का की इच्छा ये थी कि वो प्रवृत्ति मार्ग में रहे, पर जो प्रवृत्ति मार्ग भी जो है वो वैदिक मार्ग है। तो ही वॉज ए कल्चर्ड फादर, सभ्य पिता थे, तो आधुनिक युग के असभ्य समाज की पैदाइश नहीं थे दक्ष ना ही शवलाश्व। तो इसीलिए उनको इस बारे में जानकारी थी कि वो कम से कम उनको इसके लिए तपस्या के लिए जो है और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए जो है अपने पुत्र को भेजना चाहिए, तो उन्होंने भेजा, बहुत बड़ी बात। और उसके बाद अगर हम देखें उनके पास दक्ष के पास जो है उनकी उनको इतना भी अच्छी तरह से ज्ञान था कि जो बच्चे हैं, जब वो उनके जो पुत्र हैं, जब वो आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे उसके बाद जो है इसका चुनाव करने का अधिकार भी जो है उनके पुत्रों को ही है कि वो कौन सा मार्ग अपनाए, उनको पकड़ने नहीं आए या उनके पीछे पीछे नहीं आए या फॉलोअप नहीं लिए उनका क्या कर रहे हो। तो उनको पता था कि अगर आध्यात्मिक रूप से कोई भी व्यक्ति परिपक्व होता है तो उसके बाद जो है उसके परिपक्वता का अर्थ ये है कि अब वो चुनाव करने में सक्षम हो गया। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में भी मेजर सिविल राइट्स इश्यू है ये कि बच्चों को जो है कि उनका मतलब मानव अधिकार की बात है ये भी कि बच्चों को उनका अधिकार कब दिया जाए, कितना दिया जाए, और बच्चों को जो है जैसे कि तथाकथित रूप से बालिक हो जाने के बाद जो है बच्चों के ऊपर माता पिता का कितना अधिकार होता है और उसका क्षेत्रफल क्या है। हिंदुस्तान में तो जो है बच्चों को जो है बाप अपनी प्रॉपर्टी समझता है ना, जैसा वैसे वैसे मैं चला, बोल दिया ना ऐसा करना है ना, हमारे घर का खाया है तो इस तरीके से, तो अभी जो है जैसा मैं बोलूं वैसा चलना चाहिए, जैसे शास्त्र बोले वैसा नहीं चलना चाहिए, जैसे मैं बोलूं वैसा चलना चाहिए। तो ये इट्स अ मेजर सिविल राइट्स इशू, एक बहुत बड़ा मानव अधिकार का प्रश्न है कि उस बच्चे का अधिकार क्या है, एक स्वतंत्र जीव के रूप में उसका क्या अधिकार है, क्या वो हमेशा जो है पिता माता पिता नामक दो व्यक्तियों की गुलामी करेगा इस नाम से क्योंकि उनको पाल पोस के बड़ा किया। सोच के देखिए ये चीज है ना, कि कल को अगर कोई व्यक्ति किसी भी इंसान को अगर पाल पोस के बड़ा करता है, किसी को भी, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे ना हो, कार्यकलाप तो सेम है, उसको पाल पोस को बड़ा करते हैं, किसी नाथ हाल से उठा के ले आते हैं, या किसी, जैसे हमारे घरों में आज अभी भी ये कल्चर है, कई बार जो है दूर दराज के इलाकों से कोई माई हम कोटा उठा के ले आते हैं, तो बेसिकली जैसे चाइल्ड लेबर, तो उसको हम जो है पाल पोस के बड़ा करते हैं, घर में खाना खिलाते हैं, उससे काम करवाते हैं, तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं, हमारा अधिकार है उसके ऊपर? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या उसका कोई क्या नैतिक, कौन से नैतिक आधार पर जो है हम ऐसा चुनाव कर सकते हैं कि उसको चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है? तो उन दिनों भी जो है, आज से लाखों साल पहले, ये तो सर तकरीबन करोड़ों साल पहले की बात होगी, क्योंकि मनवंतर ही दूसरा है, तो स्वयंभू मनवंतर की बात हो रही है। तो उस वक्त जो है शायद चाक्षुष मनवंतर है, तो उस वक्त जो है ये कंसिडरेशन था कि बच्चों को जो है प्रशिक्षण मिलने के बाद बच्चों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो चुनाव करे कि वो किस ओर मुड़ना चाहते हैं। और इस पूरे प्रसंग में अगर हम देखें तो नारद मुनि का भी जो चरित्र है वो निकल के आता है कि नारद मुनि ने ये नहीं सोचा, ही वॉज ए फियरलेस प्रीचर, अगर हम देखें ये नहीं सोचा कि वो सब आम जबान में कहते किससे पंगा ले रहे हैं, दक्ष प्रजापति है ना, हम आज के डेट में कई बार हम प्रचार करते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि हम किसको प्रचार करेंगे, इसको प्रचार करेंगे, इसके जो है पिता या इसके रिलेटिव जो है बहुत बड़े अफसर हैं या बहुत बड़े बदमाश हैं या कुछ भी है, तो नहीं नहीं इनको इनके इनके बच्चे को नहीं छेड़ना चाहिए, इनको नहीं छेड़ना चाहिए, इनको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इनसे डोनेशन लेके आ जानी चाहिए, इनको पता की बात नहीं बतानी चाहिए, स्केयर्ड ऑफ प्रीचिंग, बट ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ प्रीचिंग नारद मुनि। अगर मटेरियलिस्ट भौतिक रूप से देखा जाए तो दक्ष जो है मतलब सम्राट है, प्रजापति है, प्रजापालक नहीं है, प्रजापति है, जिनके अंतर्गत प्रजापालक आते हैं। तब पे भी जो है तो जो एक 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 प्रचारक का जो कर्तव्य है उसको पीछे नहीं हटे, प्रचारक का कर्तव्य है कि टू स्पीक द ट्रुथ, जो सत्य है वो प्रचार करें, क्योंकि आमतौर पर जो है देखा जाता है कि हम कई बार जब प्रचारक जो है वो अगर खुद कन्विंस नहीं है, अगर वो पूर्ण रूप से जो है उसको इसका भरोसा नहीं है कि जो मैंने खुद सीखा है, जो मैं खुद पालन कर रहा हूं, यही मार्ग जो है ठीक है और इसी का जो है प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, तो जो है फिर वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड वाटर डाउन वर्जन जो है वो देना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रचार करते वक्त जो है इस प्रकार से कि आप लोग ये क्या है, आप लोग धोती कुर्ता क्यों पहनते? नहीं नहीं हम धोती कुर्ता पहनते, आपको पहनने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप तिलक क्यों लगाते? नहीं हम तिलक लगाते हैं हम, पर आपको भी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, ये सब एक्सटर्नल है। आप जो है सर क्यों मुंडवाते? नहीं वैसे हम मुंडवाते पर आपको मुंडवाने की जरूरत नहीं है। तो बोलेगा हु वॉन्ट्स टू बी प्रीच्ड बाय सच ए पर्सन, जिसको अपने किसी भी कार्य पे कोई कन्विक्शन नहीं है, जिसको हमेशा ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रीचर मीन्स वो प्रीच बाय एग्जाम्पल। तो यहां पर जो नारद मुनि जो वो खुद कर रहे हैं वो उन्होंने दूसरे को प्रचार किया, वो खुद वैरागी थे और उन्होंने वैराग का प्रचार किया। और क्योंकि सिद्धांत ही जैसे ऋषभ देव, हम अगर दक्ष के साथ ऋषभ देव का कंपैरिजन करें, दोनों पिता थे और दोनों पिताओं में से जो है दोनों ने जो है आध्यात्मिक शिक्षा दी, परंतु या शिक्षा दी या देने का प्रोत्साहन दिया, तो साथ ही साथ क्या किया, उनको चरम शिक्षा देने के बाद जो है उनको चुनाव करने के लिए दिया, और ऋषभ देव ने जो उनको निवृत्ति मार्ग की शिक्षा दी, नायम देव देव कष्टान काम भुजाम तपोदिव्यम पुत्र के नयन सब, और उन्होंने दिव्य तपस्या के लिए भेजा, और उसके बाद जो ऋषभ देव ने अपने पुत्र को रोका नहीं, उन्होंने स्वयं शिक्षा दी। तो ये कंट्रास्ट भी हम देख सकते हैं दक्ष प्रजापति और ऋषभ देव के बीच, कि दक्ष प्रजापति ने यद्यपि अपने पुत्र को शिक्षा के लिए भेजा, प्रशिक्षण के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण, पर फिर भी वो अपने पुत्र से आसक्त थे, जबकि ऋषभ देव जो है वो विरक्त थे। ये डिफरेंस है। तो वी शुड नॉट बी सेंडिंग अवर चिल्ड्रन विद स्ट्रिंग अटैच्ड, कि अब ये भी है साथ में वो भी है, है ना, इतना कर लो, ज्यादा भक्ति मत करो। जैसे कि कृष्ण जी भी अपने प्रवचन में बताते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर होता है हमारे साथ, हमने कई बार देखा है। तो पहला जो है बिगड़ा बच्चा होता है, और उसको किस तरह माँ बाप आके जो यहाँ पे गिड़गिड़ाते हैं, कहते नहीं हमारे बच्चे को अपने शरण में ले लो। तो जब बच्चा शरण में आने लगता है, आप उसे छोड़ दो। दे आर लाइक देमसेल्स अनश्योर व्हाट दे वांट ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक प्रशिक्षण के अभाव से जो है यह असमंजस की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि हम देखते हैं दस प्रजापति ने जब खुद भी स्वयं भी प्रार्थना की भगवान से, सब पूछ रहे अध्यायों में, तो उनकी अपनी प्रार्थना भी जो है उसमें भी जो है इच्छाएं थी, वो भी पूर्ण रूप से जो है विरक्त भाव से प्रार्थना नहीं थी, ही वॉज अटैच्ड। जाहिर ही बात है, तो प्रार्थना का जो प्रतिफल होगा उससे भी आसक्ति होगा। तो कई बार जैसे हम जैसे बता रहे थे कि क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार ये उक्ति है कि जो भी जीव इस भौतिक जगत में पैदा होता है, खास तौर पर मनुष्य शरीर धारण करता है, वो कर्जदार होता है, वो पैदाइशी कर्जदार होता है, क्योंकि उसके जो है उसके ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं। पिता का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, संत महात्माओं का ऋण होता है। तो ये तो पिता का वेदों में वैदिक प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्मकांड के अनुसार पिता का ऋण जो है कोई पुत्र जो है संतान उत्पत्ति करके ही जो है चुका सकता है। तो ये जो है वैदिक कर्मकांडीय विचारधारा जो है उसके अनुगत जो है ये सिद्धांत है। तो उसी को जो है खींच तान के जो है अब आधुनिक काल में जो है, क्योंकि वैदिक सभ्यता तो पूर्ण रूप से रही नहीं, तो वो उसका एक परवर्टेड वर्षन जो है वो ये है कि खानदान वंश को आगे बढ़ाना है, खानदान को आगे बढ़ाना है। तो अब आगे बढ़ाना शब्द के भी जो है अलग अलग तात्पर्य हो सकते हैं कि आगे बढ़ाने का क्या तात्पर्य है, आगे बढ़ाना है कि नीचे गिराना है। तो आगे बढ़ाने का मतलब ये होता है कि वो आगे जाए, आगे जाए, यही ना रुके, इसी मनुष्य योनि में ना रुके, इससे आगे जाए। तो आगे बढ़ाने का मतलब ये है, तो आगे बढ़ाने का मतलब जो है खींचना नहीं है। तो आगे बढ़ाने को जो है खींचने की संज्ञा दे दी जाती है, वो जैसा है वैसे चलता रहे, नहीं आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ाने का जो है सिलसिला जो है वो तभी चल सकता है जब वो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जो है वो उन्मुख हो। जैसे कि यहाँ पर शवलाश्व हो रहे हैं, और बिल्कुल अभी कंटेम्पररी सोसाइटी में भी जैसे पिता जो है या पेरेंट्स अगर पूरे तरह से हम देखे परिवार जन के लोग जो हैं वो जिस तरीके से नाराज खफा हो जाते हैं बच्चों से, कि जब वो आध्यात्मिक रूप से और खास तौर पे संत महात्माओं से, जैसे कि प्रभुपाद अपने लिए भी बता रहे हैं और हम भी देखते हैं और नारद मुनि के लिए भी, कि वो जो है बहला फुसला के जो है बच्चों को बरगलाया जा रहा है। तो ये आरोप जो अभी आगे आके जो है यही आएगा कि बच्चों को जो है बरगलाया गया है। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि नारद मुनि ने इनको कुछ भी नहीं बोला, नारद मुनि ने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि जो आपके बड़े भाई थे वो जिस मार्ग पे चले हैं, तो आप भी जो है तुम्हें यहाँ पे अतएव तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। He didn't brainwash them. He also gave him choice. अगर देखें यहाँ पर नारद मुनि ने भी जो है उनको दो चीज बोली, एक तो है कि मेरे उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, और उसके बाद जो है उन्होंने एक उदाहरण दिया उन्हें के बड़े भाइयों का, और उनके बाद उनको एक निर्देश दिया। अच्छा, सो ये तरीका है प्रचार करने का भी, कि हम जब किसी को प्रचार करें तो उसको जो है प्रचार करने के बाद जो है उसको छोड़ दें उसके हाल पर, ये सोच के कि हमने जो उसको बताना था वो बताया, अब वो अपने विचार बुद्धि के अनुसार जो है जो फैसला लेगा और जितना वो ग्रहण कर सकता है उतना ही वो ग्रहण करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ये बात सच है कि जो प्रचारक है वो उसके भले का सोच रहा है, पर वो भले का सोचने के बाद उतना ही भला कर सकता है जितना भला वो चाहता है, उससे ज्यादा भला नहीं कर सकते आप उसका। तो कई बार जो है ये हमारे आसक्ति का सूचक होते हैं कि हमने जो है बता दिया आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, आपके लिए श्रेय क्या है, तो उसका वो पालन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके विचार बुद्धि अनुसार जो वो जितना ग्रहण कर पाएगा वो उतना ही ग्रहण करेगा। तो यहां पर शवलाश्व जो है वो बहुत उन्नत थे, जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया कि वो बहुत उन्नत थे, इसी वजह से जो है नारद मुनि ने जो है उनको क्योंकि पहले जैसे इसमें 27 और 28 श्लोक में जैसे कल चर्चा की है, तो जिस प्रकार से वो तपस्या कर रहे थे, हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित है, क्योंकि वे परम पुरुष परम हंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते थे। इस लेवल पे वो थे, इसलिए उनको उस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो ये भी देखना जो है बहुत एक कर्तव्य है एक प्रचारक का कि किस प्रकार के मनुष्य को किस प्रकार का उपदेश दिया जाए। तो ऐसे उन्नत व्यक्ति को जो है प्रभुपाद नारद मुनि ने जो है श्रेष्ठतम उपदेश दिया कि आप मत फंसिए, आप निवृत्ति मार्ग को चलिए, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है और आपकी मंजिल जो है बहुत नजदीक है। तो इस प्रकार से तो ये बहुत जरूरी है और प्रशिक्षण जरूरी है, जैसे कि उनके पेरेंट्स ने भेजा, मतलब दक्ष प्रजापति ने भेजा। अदरवाइज अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि ज्यादातर परिवार में जो है, क्योंकि अभी जितना जो है समय निकलता जा रहा है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है, तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, तो उसमें इसमें जो है आमतौर पर एक बच्चा होता है, एक संतान होता है, बहुत ज्यादा होते दो संतान होते हैं, एक लड़का एक लड़की, या एक लड़का या एक लड़की, या ऐसे दो लड़के, कुछ भी ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है, क्योंकि वो एक ही लड़का होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, यूजुअली आश्रय नहीं मिलता, शय मिलती, ही डजंट गेट प्रोटेक्शन, ही गेट्स पैम्परिंग एंड ही एंड्स अप बिकमिंग अ स्पॉइल्ड ब्रैट। वो जो है फिर बिगड़ा हुआ बच्चा बनकर निकलता है। कैसा बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। पहला होता है लापरवाह, दूसरा होता है असंवेदनशील, जैसे अपने अपने रूम में बैठा होगा, आवाज मारेगा मम्मी पानी देना, पानी वहीं पड़ा हुआ है, सुबह सुबह आएगा, शाम को जहां से भी आएगा, जूते पड़े होंगे इधर, कपड़े पड़े होंगे इधर, नए कपड़े उठा के निकाल देगा, अलमारी जो है समेटने की कोई जरूरत नहीं है, गंद मचा हुआ होगा, ये होगा। उसको आप 2000 रुपए दो, दो पैसे कभी बिल ला के नहीं देगा, पता नहीं कहां गए पैसे, फिर पैसे चाहिए। उसको 2000 का मोबाइल का बिल हो गया तो तभी भी जो है उसी फोन पे जो है अपने बाप को ग्वालियर निकाल रहा होगा कि पैसे नहीं देता। उसको लेटेस्ट गैजेट चाहिए, सब चाहिए। दो उसका जो है मूल मंत्र जो है वर कृष्ण महामंत्र नहीं है, उसका मूल मंत्र ये है चाहिए चाहिए चाहिए, और नहीं है नहीं है नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं, बस आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, ये नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, कंप्लीटली इरेस्पॉन्सिबल। और साथ ही साथ क्या, क्यों, क्योंकि कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं, वो अपना काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसको अपना काम करना सिखाया नहीं गया। फिर इस बच्चे को जो है बाहर भेज देते, जाओ बाहर जाके जो है दुनिया में रहो, तो दुनिया में जाके वो अपने हिसाब से चीजें सीखता है, और उसके बाद जो है वो यूज एंड थ्रो करना सीखता है। पहले वो जो है वस्तुओं के साथ यूज एंड थ्रो करता है, फिर वो व्यक्तियों के साथ यूज एंड थ्रो करता है, ऐसे प्रगति होती है उसकी। पहले ये सामान है पसंद नहीं है, चलो जी बदलो नया ले आओ, ये सामान बदलो नया ले आओ, उसके बाद ये दोस्त अच्छे नहीं है बदलो नया ले लो, उसके बाद ये पेरेंट्स भी जो है ये छोड़ो इनको पुराने हो गए हैं, कम्स टू दैट। आज से दो जनरेशन पहले जो है, कम से कम हमारे से एक जनरेशन पहले तक भी जो है सोच ही सकता था कि बाप पे हाथ उठाएगा। आजकल का बाप अपने बच्चे को सच बोलने से डरता है, ये हालत है, क्योंकि देयर इज नो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहां से होगी, ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਦੁਰਗਤੀ। ਯਹਾਂ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਯਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਮਿਲੇ। ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹਮਾਰੇ ਆਈਵੀਐਫ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ। ਵੋ ਡਿਵੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਐਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ ਘਰ ਪੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਔਰ ਮੁਝਸੇ ਪੂਛਾ ਆਕੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਂ ਕਿਆ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹਮ ਵੋ ਸਿਖਾਤੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਭੀ 21-22 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਯੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਕਮਾਨੇ ਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ ਰੂਪੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਤੋ ਘਰ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੜਕਾ ਜਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, 90 ਡੇਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਗਾ ਉਸਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੀ, ਬਸ ਉਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਘਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਕਿਉਂ, ਯਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਐਸੇ ਕੌਨ ਸੇ ਗੋਲ ਖਿਲਾ ਲੇਗਾ ਲੜਕਾ, ਐਸੇ ਕੌਨ ਸੇ ਸੀਂਗ ਨਿਕਲ ਆਏਗੇ ਉਸਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਥੇ। ਸੋਚੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਤਬ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਰਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਥਾ, ਅਭੀ ਜੋ ਤੱਕ ਸਰ ਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਡਾਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਭੇਜ ਦੋ, ਗੋਲੀ ਤੋ ਚਲਾ ਹੀ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੋ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਖੇਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਯੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਭੀ ਨਵਯੁਵਕੋ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਵੋ ਆਏ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਯੇ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੇਗਾ, ਓ ਅੱਛਾ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਂਗੇ, ਤਬ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਂਗੇ, ਜਬ ਕਿਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ ਬੁਲਾਏਂਗੇ, ਬੋਲੇਗਾ ਆਪਕੀ ਵਾਈਫ ਕਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੂੰਹ ਚ ਵਾਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਬੁਲਾਏਂਗੇ, ਆਪਕਾ ਬੱਚੇ ਕਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਾਹਰ ਰਹਤੇ, ਬਤਾਤੇ ਹਮਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੇਂ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਭਗੋੜਾ ਕਹੀਂ ਕਾ। ਕਾਲ ਪਾਸ ਕੇ ਬੜਾ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਅਭੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝਨੇ ਕਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਗ ਗਿਆ ਉਸ। And we should not be surprised because we haven't trained them. Without investment, returns chahiye. Hum chahte hain ki hum jo hai parents ka jo hai jo daitva hai uska palan kiye bina jo hai putra jo hai aur jo putri hai wo apne uttaradayitva ka palan kare, kyun kare? Sawal ye hona chahiye. Sawal ye nahi hona chahiye ki bacche kyun bigad rahe hain. सवाल ये होना चाहिए, कि बच्चे जो अपने पेरेंट्स के प्रति की परवाह करे तो क्यों, हमने उनको दिया ही क्या है? सिर्फ पैसा फेंका है? दैट इज नॉट एजुकेशन, दिस इज मिस एजुकेशन। यहां पर जो है इसी संदर्भ में और प्रभुपाद के जो तात्पर्य आते हैं वो इसी संदर्भ में, जो ऐसे पेरेंट्स, अब पेरेंट्स जो है अपनी जिम्मेदारी जो नहीं निभा रहे हैं तो जो पेरेंट्स की जगह की जो जिम्मेदारी वो कोई दूसरा निभा रहे हैं तो वो उनका दुश्मन बन जाते हैं। अगर साधु वो जिम्मेदारी निभाता है तो साधु इज द एनिमी नंबर वन ऑफ द पेरेंट्स, आइडियली शुड हैव बीन डन बाय द पेरेंट्स। which is not very palatable actually. और पता है क्या, हमने देखा है उम्रें निकल जाती हैं पर तभी भी बात नहीं समझ आती है गलती कहां रही है, मेरा बच्चा ऐसा है तो क्यों है, अदरवाइज उल्टा होगा, he will be my mama's boy, बस चिपका रहा है अपने छाती के साथ, बस sheltered, so called, जो बाहर की दुनिया को फेस करने से डरता है, या तो वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है, नाकाबिल है, या वो जिम्मेदारी उठाने से डरता है। So that is because of lack of training. तो ये पहला कर्तव्य है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को जो है प्रशिक्षण के लिए भेजे। अरे बाबा, हम तो पहले पुराने पिक्चरों में देखते थे कि बाप जो है वो किसान है, खेती कर रहे हैं, कहता मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मेरा बेटा आईएएस बने, तो क्या इसके लिए नहीं होना चाहिए, ये जो प्रशिक्षण हमें नहीं मिला इसे तो मिले। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को जो है ट्रेन करें, फैसिलिटेट करें, प्रमोट करें। पहले जो सिस्टम था, प्रभात अपने एक तात्पर्य में बता रहे हैं भागवतम में, ये एग्जैक्टली याद नहीं है वो कोट, पर प्रभात वहां बता रहे हैं कि पहले जो है जब कोई गुरुकुल में से बच्चे पढ़ते थे और गुरुकुल में से कोई बच्चा जो है बाहर जाके भीख लेने जाता था, तो जिस भी दरवाजे को खटखटाते थे उस दरवाजे से भीख मिल जाती थी। क्यों मिल जाती थी? क्योंकि हर घर का बच्चा जो है किसी न किसी गुरुकुल में होता था, उसको पता होता था कि जो भी लड़का आ रहा है वो जो लेके जा रहा है उसका एक भाग जो है मेरे बच्चे को मिलेगा। तभी क्या है सिस्टम, नहीं वो मेरा बच्चा तो हॉस्टल में या स्कूल, जिस भी स्कूल में भी है, तो क्या जरूरत है इसकी? कर्मी स्कूल में डालने के लिए जो है 20 लाख डोनेशन देने के लिए तैयार है। That is not college, it's like school, first standard. Nursery शुरू होगा 20 लाख डोनेशन, मैं को पता लगा तो नीचे स्कूल है या संस्कृति स्कूल, 20 लाख डोनेशन लेते हैं वो स्कूल, लाइक यार मंगलम 6-6 लाख डोनेशन लेते हैं, तो 20 लाख डोनेशन देके जो उस लड़के को भेजने के तैयार है, उसके बाद ये थोड़ी 20 लाख इंटरेस्ट से जो उसका चलेगा, उसका फीस अलग है, क्या सिखाएंगे उसको वहां पर, क्या सिखाएंगे, हाउ टू बिकम लिटरेट, ABCD, आप इतने कहे गुजरे को उसको ये भी नहीं सिखा सकते घर पे बैठ के, उसको सिखाने के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, और इसका क्या होगा, वो शरीर नहीं आत्मा है, और उसकी जब तक और आत्मा है जरूर है, पर जब तक इस शरीर में उसकी जिम्मेदारियां क्या है, सिंपली बिकम इरेस्पॉन्सिबल। 18 साल 17-18 साल की उम्र तक जो है जब वो बच्चा बालिग होता है तब तक इरेस्पॉन्सिबल जीवन जीने के बाद, जिंदगी जीने के बाद हम उससे उम्मीद करें कि अचानक जो है वो जिम्मेदार बन जाए। हाउ कैन यू टीच एन ओल्ड डॉग टू लर्न न्यू ट्रिक्स? 18-20 साल तक जो उसको बिगाड़ने के बाद फिर तो वो बच्चा बिगड़ रहा है, अभी उसको सुधारो, तो क्या सोचेगा वो, सोचेगा मालिक पागल हो गए, तभी तो कहते घर वाले पागल हो गए। That is why their system is like that. Don't trust anybody over 30. They don't trust. इसके लिए हम जिम्मेदार हैं. Simply sending those to such places where we pay these schools to get them robbed of their faith. That's all. ठीक है, हमारा कन्वेंशनल सिस्टम इस प्रकार से कि हम लोग हर किसी को जो है इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही गुजरना पड़ता है, तो पर घर पे क्या वैल्यू सिस्टम है, बात ये हो रही है, क्या उसको काउंटर करने के लिए, क्या उसको मैच करने घर पे कोई वैल्यू सिस्टम है? और अगर नहीं है, और अगर आकर आपके घर पे वो वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो क्या कैन यू प्लीज फॉर क्राइंग आउट गॉड सेक सेंड देम टू सच ए प्लेस जहां पे वैल्यू सिस्टम है। वो टेम्पल है वो आश्रम लाइफ है, तो गॉट बेस्ट सेंटर्स इसके लिए। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, आपके घर पे लाइब्रेरी है, आपका बच्चा पढ़ाई कैसे सीखेगा कैसे? हाउ मेनी पीपल हैव गॉट लाइब्रेरीज एट होम? आपका बच्चा आपको किताब से प्यार कैसे होगा? क्या कल्चर है आपके घर का? आप सोचो। ऑल दिस सी इन द नेम ऑफ बुक्स सम रबिश मैगजीन्स। तो सिस्टम नहीं है। बच्चा सीधा बड़ा हो जाए फैक्ट्री में डाल दो उसको, अरे कमाल। वो घर पे हिसाब देता नहीं हो कि ये वैल्यू सिस्टम्स होती है। बेसिक्स स्किल्स हैं। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं होगा, जब तक उसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं होगा, तो वैल्यू क्यों करेगा? पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए? कहां लिखा हुआ है भाई? कहां लिखा हुआ है बताओ? वो पूछेगा ना सीधा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि पिता का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संविधान में कोई ऐसा वो नहीं है कि पिता का सम्मान नहीं करेगा तो जेल जाना पड़ेगा या फाइन देना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे? कहां लिखा हुआ है? तो शास्त्रों में लिखा हुआ। तो शास्त्र में पहले ये लिखा हुआ, जो परम पिता का सम्मान करेगा तो पिता का सम्मान करेगा वो। तो ये वैल्यू सिस्टम है, ये आधार है, शास्त्र आधार है कि उसका वैल्यू सिस्टम बने उसके पहले, उसके बाद जाके वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। जब वो व्यक्ति इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है कि हाउ टू बिकम ग्रेटफुल, हाउ टू बी लॉयल टू अवर ओन पेरेंट्स, कैसे करेगा? अपॉर्चुनिस्ट बनेगा बस। फादर्स डे पे, मदर्स डे पे ग्रीटिंग ला देगा बस, और सोचेगा हाँ बस मेरा बच्चा जो है मेरे हाथ में। और हर माँ को ये लगता है मेरा बच्चा सबसे शरीफ है, एक नंबर का बदमाश क्यों ना हो, मेरा बेटा बहुत शरीफ है, मेरी बेटी बहुत शरीफ। अच्छा, क्या सिस्टम? हमने पूछा भी था पेरेंट्स, बच्चे से पूछा था एक पेरेंट्स, मैं आपका बच्चा किस टाइप सोता है रात को? पता ही नहीं था, पहले मैं चुप हो गया, पहले सो जाते, पता नहीं क्या उठने का टाइम है उसका, पता नहीं जी, ऐसा कोई टाइम नहीं। वो तो जानवर को भी खाने सोने का टाइम होता है आपका, वो भी नहीं सिखा पाए बच्चे को, उसको खाना सोना भी ठीक से नहीं सिखा पाए, और क्या सिखाएंगे आप उससे? उसके बाद उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो जो है, फिर कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं, बहुत डिटैच बनने का प्रयास भी करते हैं, नहीं हमें अपने बच्चों का कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों का पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। छोड़ दो ना फिर उसको, थोड़ा दो ना भैया, थोड़ी आजादी दो ना उसको। हमें बच्चे का कुछ नहीं चाहिए, ये सब पागलपन की निशानी होती है सारी। क्या भला सोचेंगे किसका? तो अपना ही भला नहीं सोच पाए तो उसका क्या भला सोचेंगे? तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन। या आप उनको ट्रेन कीजिए या फिर तैयार रहिए भुगतने के लिए। ये मैसेज है इसका, इस पूरे चैप्टर का जो है, जो पूरा जो सार निकलता है, मजमून निकलता है, वो यही है। धन्यवाद। किसी को प्रश्न तो पूछ सकते? सब क्लियर ही है। श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की। अस्थित भक्तवृंद की। जय गोष्ठनाथ प्रेमानंदे हरि बोल।